सीता के भी थोड़ा सा भी अनुराग हो तो उस अनुराग को वो बहुत समझते हैं। थोड़ा सा भी कोई वस्तु उनको दे दे, जैसे पत्रम पुष्पम फलमतोयम जो मेरे भक्त्या प्रयच्छ तदहम भक्त भक्तम स्नामी त्वचता। जो लोग बड़े प्रेम के साथ में बड़े प्रयत्न के साथ में कुछ भी नहीं रहने पर पत्र पुष्प सूखा तंदूर का टुकड़ा फल शबरी का फल सुदामा विप्र मंगनी मांगकर खुद ले गए, हो सकता है उस खुद में धान के टुकड़े भी और लेकर के गए। अब कृष्ण ने उसको क्या माना, अब इसके बदले में मैं मेरे पास में कुछ नहीं देने को है, क्यों इनके तो घर में कुछ नहीं था, वो मंगनी मांग कर चले गए, कृष्ण को कुछ मंगनी मांगना नहीं, सारा ऐश्वर्य इनके पास में है, मंगनी मांग करके तो देंगे नहीं, अब इनको क्या इसके बदले में दें। और सब कुछ भी इनको देकर, सब कुछ तो नहीं थोड़ा सा कुछ दिया, और सोचा कि लज्जा से जो इसको आमने सामने नहीं देना चाहिए, इसलिए लज्जा बसत रात में उनको इनके अलक्षित रूप में ये सबको उनको दिया, और फिर भी अपने को मानते जी मैंने कुछ नहीं दिया। इसी प्रकार से भगवान के लिए जो थोड़ा सा भी साधन करते हैं, कृष्ण के लिए सचमुच में घर बार स्त्री पुत्र परिवार सबको छोड़, रुपया पैसा मान अपमान सब छोड़ करके जो कृष्ण के लिए थोड़ी सी भी छोड़ करके आते हैं, भजन पूरा भी नहीं हुआ, कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको कदापि नहीं छोड़ सकता। इस तरह से थोड़ी भी चीज यदि ये कर रही है श्रीमती राधिका, कृष्ण में ऐसे सब गुण हैं जो हम लोग उनकी सेवा कुछ नहीं कर पाती तो भी इसको बहुत मानते हैं और अपने ऋणी बन जाते हैं, न पारे हम निर्वर्त संग जाने, और गोपियां उनसे बातचीत करना चाहती हैं श्रीमती जी, कृष्ण बहाना बनाकर वो लज्जा से बोल नहीं पाती क्योंकि उनको लज्जा अधिक होती है, बोल नहीं पाती, कृष्ण ऐसा बहाना बना करके उनसे बातचीत करते हैं, कृतज्ञता स्वीकार करते हैं और ऐसे रूप में व्यवहार करते हैं जिसे ये दिन भर रात भर स्मरण करती हैं गोपियां। ऐसे भी देखते हैं कृष्ण कैसे सुंदर हैं, कैसे सुंदर बंसी बजाते हैं, कैसे कृपालु हैं, अहेतु की कृपालु हैं, और सब उनमें विशेष करके नायक के जो गुण हैं उन गुणों का ये स्मरण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु संतापे विवर, जैसे प्रणत का मधुरया गिरा बलगु वाक्या करे क्षण विधि करी इमान मान मुह्यते मन विधि करी इमान मधुर यागिरा बल्गु वाक्या मनोज्ञा पुष्करे क्षण विधि करी इमान वीर मुह्यते। और ये प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम व्यणन चमे ध्यान मंगलम रहस्य संविदम, रहस्य संविदम अकेंत में मिलकर के रहस्य संविदम, बड़ी मधुर 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 मीठी मीठी बातें उनसे जैसे वो स्मरण करते करते, जैसे श्रीमद्भागवत में प्रेम के बदले कोई प्रेम करता है, जो प्रेम नहीं करने से भी प्रेम करता है, जो प्रेम करे ना करे किसी से भी, इसका कितना सुंदर सब सुंदर दिया यह है बुध मनोज्ञ उसकर एक क्षण उसकर क्षण उसका मैंने बड़े कल्याणदायी बड़े प्रेम से उसके तरफ में इच्छण करते हैं, ठठोली बोली कैसे प्रेम से करते हैं, जीवन भर इसको भूल नहीं सकते। महाप्रभु जी उसी को स्मरण कर, साथ जैसे जैसे राधा जी स्मरण करती है, गोपियां स्मरण करती है, अड़क इज्जत भवान नहीं, इसके बाद का अड़क इज्जत भवान, इसके बाद इसके बाद अड़क इज्जत भवान अन्य कारणम तृण युगा तुरीयुगायते ताम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखंतते जड़ उदीक्षताम पक्ष कृतिता ब्रज जनऊ कसान व्यक्त रंग गति हाँ ये पति सुतान्वय पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंघते अंच अंत अच्युता गता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितव जोषितो ये सब कितने कितने ये सी सब का स्मरण ये गोपिया और अंत में कहती हैं न पा रहे हम। देखो तो कैसे ये हैं कृष्ण कैसे मीठी मीठी बातों से था मैं तुम्हारा ऋणी हूँ कोटि जन्म में तुम्हारा इस ऋण को नहीं चुका सकता। इस विषय को महाप्रभु जी गोपी भाव से स्मरण कर रहे हैं और वो करके संताप में विवल कर आज कोई नहीं है आज वो मथुरा चले गए द्वारका चले गए अब कोई ऐसा नहीं कृष्ण नहीं संताप में विवल राय स्वरूप कंठ धरी कहे हा हा हरी हरी धैर्य गेलो हईल चप्पल धैर्य गेलो मैंने और चप्पल हो गया मैं धैर्य मैंने हरी क्या धैर्य है राय और स्वरूप राय रामानंद स्वरूप दामोदर के कंठ को पकड़ करके कहे हा हा हरी हरी रोने लग गए और उनका धैर्य टूट गया।
दूसरा अनुभव
है
दूसरा अनुभव
है घर से चला गया मैंने जो बात नहीं करनी चाहिए जो बात नहीं करनी चाहिए उनका घर के ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नहीं कहा जा सकती और उन बातों को सफल होकर और उसको बहुत सी ऐसी बातें होती हैं या प्रियतम में या स्त्री पुरुष में या घर में भी रहता है ऐसी बातें जिसको कभी नहीं कहा जा सकता बस एकदम चंचल होकर के प्रिय सखी को पा करके बस कहने लग गए। सुनो बांधव कृष्ण है माधव सुनो सुनो बांधव हे बंधु हे सखी देखो कृष्ण की माधुरी कैसी है जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं जार लोग है मोर मन छाड़ी लोक भेद धर जिसके लोभ से मेरा मन धैर्य को छोड़ दिया छाड़ी लोक वेद धर्म लोक धर्म और वेद वेद का धर्म क्या है पति को स्त्री को पति को नहीं छोड़ना चाहिए छोड़कर किसी के भी पास में नहीं जाना चाहिए यदि पति परदेश गया हो तो स्त्रियों को पान इत्यादि खाना श्रृंगार करना और कहीं दूर में जाना ये सब मना है और कहा उसको छोड़ दिया किस लिए के का से मयूर कहता है के और वो कहती है मयूरी का राधा जी का धैर्य मां लज्जा ये पर्वत के समान है विशाल हिमालय के पर्वत के समान है इसको कौन चकना चूर कर देता है क्षण मात्र में अपने बंसी से स्मित हास्य से कृष्ण उसे क्षण मात्र में दूर कर देते हैं और कृष्ण जैसे मदमक्त हस्ती को कौन बांध करके उसे रख देता है शीकल में कौन स्मृति राधिका जी का तो यहीं तक जार लोग हैं मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म लोक के जितने भी हैं धर्म क्या सच बोलो झूठ मत बोलो ये पहली चीज शास्त्र जी कहां जा रहे क्या कहें सूर्य पूजा के लिए झूठ बोलती है ये वेद धर्म घर के समस्त पति की सेवा का काम छोड़ करके चला जा रहा ये भी पति को छोड़ना ये भी वेद धर्म लोक धर्म और इसका अतिरिक्त वेद के सारे धर्म को इसने छोड़ दिया है जो भी हो या हो दिखाए इन सबको छोड़ करके जोगी होकर के भिखारी, जोगी होने पर बड़े बड़े राजा लोग भारतवर्ष में जोगी हो गए। जोगी दो प्रकार का, यहाँ पर भक्ति जोगी को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जोगी जैसे बिहार में एक जोगी हो गए, वो सारंगी बजा करके, तुम जानता है सारंगी बजा करके गीत गा करके भिक्षा मांगते सब करते हैं, उसका नाम कौन जोगी जैसे गोरखनाथ जी कैसे बड़े राजा के लड़के और विवाहित सुंदर भार्या उच्च कुल धनाढ्य कुल के लोग, उनके गोरखनाथ के गुरु कोई थे गोपीचंद है लखिंदर मच्छिंदर मच्छिंदर हमको यह पहले बचपन में थोड़ा सा सुना होगा। भिखारी बन गए और उन लोग कान में कुंडल पाल लेते हैं, शंख का, सोने का नहीं, शंख का कुंडल। शंख इसलिए कि वो एकदम सस्ता से सस्ता हार इत्यादि का बनता है, शंख हार है, उसे ग्रहण करते हैं। शंकर जी जैसे कि मुंड वाला इत्यादि धारण करते हैं, शंख का कुंडल धारण करते हैं और धारण करके देश देश इसमें जाकर के भिक्षा मांगते हैं और अपना जीवन किसी प्रकार से निर्वाह करते हैं। और ऐसे जोगी जो कुछ करते बस हो जाए, मैंने संसारिक से भक्ति से कोई संबंध नहीं, ये अष्टांग योग इससे ये योगी से, जिसको कहते मर जाए, जिसको कहते जीवित हो जाए, जिसको कहते बेटा हो जाए, ऐसे सब हाथ से जो कुछ कहेंगे बस सब कुछ हो जाए। इस तरह से योगी होकर के जात लोग है मोरमा छाड़ी लोग वेद धर्म योगी भैया राज का राज्य पद छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, योगी बन गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी योगी बने, किंतु ऐसे नहीं जो कान में कुंडल हो, उनका कुंडल क्या था, कृष्ण की कथा ही कुंडल। अब बेसर क्या था, भगवान को अर्पित किया हुआ शुगर, ये सब सुना बांधव कृष्ण माधुरी। जार लोभे मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म, जोगी हैया हैला भिखारी, सुन बांधव कृष्ण र माधुरी। कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल, कृष्ण की लीलाएं जैसे वो लोग धारण करते हैं शंख में कुंडल, कुंडल शंख का, और ये भिखारी होकर के क्या करेगा, कृष्ण की लीलाओं कथाओं का मंडल माने समूह, कृष्ण की लीला कथाओं का दिन रात श्रवण करता है। शुद्ध गढ़ी आछे शुभ कारीगर, इसको किसने गठन किया, किसने निर्माण किया, सुखदेव गोस्वामी ने। बहुत तरह के इनके आभूषण है कानों के, जिसमें वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, अमर गीत, ये सब काम सुंदर से सुंदर कितने प्रकार के, ये बस इसी का स्मरण करते हैं। एक कुंडल काने पर ही कृष्णा लाऊ थाली धरी, इस कुंडल को कान में धारण करके ध्यानकर्ता ने पहले श्रवण किया, भगवान कृष्ण की लीला कथाओं को श्रवण किया, किससे सुना किया, अनुश्रणियात अथ वर्णीय जह, इन्होंने किसे सुना, वेद व्यास से, सुखदेव गोस्वामी, ये अपने आप निर्माण करना नहीं सीखा, और सीख करके अनुश्रिया निरंतर श्रवण किया, और इसके बाद में तृष्णा पैदा हुई, किस चीज की, मैं राधा कृष्ण की सेवा करूंगा या करूंगा, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो तृष्णा लाऊ थाली धरी, लौकी का थाल, कमंडल लौकी का बनता है, वो भी पीता कड़ुआ, कड़ुआ यदि हो लौकी, उसको पहले काट करके कच्ची स्थिति में और उसको सुखा देते हैं, फिर साफ करके जिसमें कोई कीड़ा न लगे, पानी गंदा ना हो, इसलिए उसको सुखा करके अच्छी तरह से पूजा। ये अब उसमें वो क्या करते हैं, तृष्णा, ये है तृष्णा, खाली है ना, उसी को लेकर के भिक्षा के लिए जोगी लोग जाते हैं घर घर में भिक्षा कुछ कर, भिक्षा कर, किसी ने रोटी दे दिया, किसी ने दाल दे दिया, किसी ने सब्जी दे दी, जो जरूरत है उसी को उसमें रख दिया। उसी तरह से कृष्णा रूपी लाऊ का वो पात्र धरी धारण करके आशा झूली कंधे रूप, आशा की झूली कंधे कंधे पर लटका दिया, कान में तो वो उसे तृष्णा पैदा हुई, तृष्णा मैंने लोभ उत्पन्न हुआ, और लोभ होने पर अब जीवित रहता है किस से, आशा भरई हम सिंध मयी कथंचित कालो मया की गमिता कल क्लेशां प्रथम दे पंचे कृपा मई विधास्त सुनई प्राणी ब्रजेन बरोरु आशा भरई अमृत सिंध मयी कथंचित। जब रूप गोस्वामी से स्वरूप दामोदर आय रामानंद से महाप्रभु के स्वयं मुख से रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रवण किया ब्रज की लीलाओं को, तो इनकी आशा मैंने लाख मुख धारण कर और उस रस की लीला का पान करने के लिए आतुर हो उठी। माने क्या, वृंदावनेश्वरी कदा वृंदावनेश्वरी वयोगुण रूप लीला सौंदर्य केली जलधे करुणावते, कितनी वो संकल्प कल्प ध्रुम, एक ऐसा कल्प ध्रुम है, एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें फल लगे, कितने फल अनंत, उसके आशा कैसी है उन फलों को पाने के लिए लाखों प्रकार के लिए ये आशा कर, और जीवित नहीं रह सकती तभी अभी मिल जाएगा, ये आशा से कृष्ण मिलेंगे, उनकी सेवा मिलेगी, इसलिए जीवित रहे। कृष्ण के मथुरा जाने पर, वहां से फिर द्वारका चले जाने पर गोपियां किस लिए जीवित हैं, कल आएंगे कृष्ण ऐसा कह करके गए, यही आशा के लिए वे जीवित, नहीं तो कभी मर जाते। कृष्ण ने कहा जी मैं जरूर आऊंगा, तो कृष्ण जरूर आऊंगा, और यदि आ गए और हम इसी बीच में मर गए तो कृष्ण को बहुत दुख होगा, ये दुख नहीं सहज, इसलिए आशा भरई अमृत सिंधु मय। आशा कैसी है, यदि समुद्र अमृत का समुद्र हो, कैसी अथा अनंत गभी, ऐसी इनकी आशा की का समुद्र जो है वो अनंत है, आर पार नहीं, इतनी आशाएं और वो कितनी गंभीर है जिसका कोई अथा न था, था नहीं है जिसका, ऐसी इनकी अनंत आशाएं, इसके लिए राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति के लिए आशा भरी अमृत सिंध मये कथनचित कालो मया की गमिता की सांप्रतम ही, मैंने बड़ी दुख से जो अब आशा की पूर्ति हो, अब आशा की पूर्ति होने वाली है, बस इसी आशा से जीवन किसी प्रकार से कथनचित, मैंने किसी प्रकार से धारण नहीं किया जाता तो अभी प्राणों को धारण करके मैं संजीवित, पंचे कृपा मई विधाशी नई बखिन, हे स्वामिनी जी, हे मेरी आराध्या देवी श्रीमती राधे, आप तो बड़ी दया दी, यदि आप हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी उन आशाओं को पूरा नहीं करती और आप दर्शन नहीं मुझे देती तो मुझे कृष्ण से क्या जरूरत है, मुझे वृंदावन बाग से क्या आवश्यकता है, मुझे राधा कुंड से भी रहने की क्या जरूरत है, और फिर इन निकृष्ट प्राणों को धारण करने की मुझे पूरी आवश्यकता है। तो इस तरह से आशा की झूली, फिर कहते हैं उत्साह निश्चया धरिया, निश्चया माने क्या और धैर्य माने क्या, कृष्ण मिलेंगे ये साधक समझता है, ये कृष्ण मिलेंगे इसलिए धैर्य धारण, हम लोगों की कोई बात नहीं, हम लोग तो खाते पीते आराम से हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं, खाते पीते पहनते हैं सोते हैं उठते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कुछ बड़े आराम के साथ। इसलिए हम लोगों को ये उन लोगों के लिए है जो यथार्थ में साधक हैं, भाव के साधक हैं, उन लोगों के। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि इस प्रकार से उत्साह निश्चय। निश्चय मैंने क्या, ये आशा रखो जरूर मिले, तो जरूर मिलेंगे तो तब फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे रहेंगे नहीं, तब तब कर्म प्रवर्तना भक्ति के अंगों का यथाजत पालन करें। तो आशा झोली कांधे, इसी झोली को लेकर के भक्त साधक भक्त जीवित रहता है। और जब विचार करता है कि हमें क्या मिला तो देखता है जैसे कुछ नहीं मिला, कुछ किंतु तटस्थ होकर के विचार तो करने पर यह मालूम होता है कि बहुत कुछ मिला। अभी हम लोग सोचते हैं हम क्या है, प्रेमर स्वभाव यही, प्रेमर स्वभाव यही, प्रेमर संबंध
जारे है, इसलिए माने नहीं प्रेम
जिसको प्रेम का जितना ही उच्च प्राप्ति है वो ये समझता है कि हमें प्रेम का बंध नहीं है, यह प्रेम का स्वभाव है। श्रीमती राधिका जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रति हमारा तनिक भी कोई प्रेम नहीं है। महाप्रभु जी ये जो गंध
प्रेम
ये राधिका जी की उक्ति है, महाप्रभु जी की उक्ति नहीं है। राधिका जी कृष्ण के प्रति सबसे श्रेष्ठ प्रेम राधिका जी को, और वो क्या मानती है, प्रेम का बंध नहीं। मछली को जैसा पानी से प्रेम है, हाय कितना दुर्भाग्य की बात है हमको नहीं है, उन्हें तो चाहिए ऐसे ही तो नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं ये साधक, मान ले कि जैसे कोई भी साधक हो वो कहता है जो है हमें कुछ भी भक्ति का बंध नहीं है, जब वो खुद विचार करता है तो ऐसा देखता है, कहा स्वप्न में भी तो कृष्ण नहीं आते, स्वप्न में भी कोई स्फूर्ति नहीं होती, खाने में भोजन में संसार में हमें तनिक भी फर्क नहीं है, फर्क नहीं हुआ, खाते हैं पीते हैं चल, कभी चित्त द्रवित नहीं होता कृष्ण का नाम सुन करके, चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों से स्वाभाविक रूप में आंसू नहीं आते, खेद नहीं होता, होता है कहां, कभी कुछ नहीं होता, ऐसे ही निरर्थक जन्म। नरोत्तम ठाकुर जी क्या कहते हैं,
बुरा
कहूं ना भजिया मैंने, गोरा चंद्र जी का, गौचंद्र का, जो राधा के भाव से कृष्ण ही हैं और प्रेम देने के लिए आए और उनके प्रति हमारा तनिक भी प्रेम नहीं हुआ, ना भजी हूं मैंने, तनिक में मैंने भजन नहीं। उन्होंने तो कितने खेद के साथ में ये पद्य लिखा होगा, गीत लिखा होगा, और हम लोग इसको तनिक भी हमारे यहाँ पर एक रेखा नहीं खींचती है, ऐसा पत्थर और वज्र का जो है, बुरा कहूं ना भजिया प्रेम रतन धन हिलाए मैंने, सजी मैंने सब कुछ खो दिया है,
अधन
जतन करी
धन दिया,
जो धन नहीं है उसको दिए तो मैं दिन भर मरता हूं, जो धन नहीं संसार में लस्तम पस्तम हो रहा हूं, कौड़ी के लिए मर रहा, फूटी हुई कौड़ी भी जानते हैं कि इसमें एक धागा भी लेकर के सुई भी लेकर के नहीं जाएंगे, एक केश भी नहीं जाएगा साथ, संसार में सब कुछ रह जाएगा और जिनके लिए मैं कर रहा हूं वो भी हमको कष्ट देंगे, ये सब कुछ समझते हैं, और ये समझते हैं कि वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां जर्जर हो गई, तो भी नहीं मानता, तो भी नहीं, आ जाओ कुछ भजन करो, खाना पीना हम देंगे, घर रहने के लिए देंगे, तुम्हारे घर से अच्छा घर देंगे, जैसा चाहते आ जाओ, क्यों तुम्हारी स्त्री है नहीं वो मर गई है, बेटा बेटा मानता है नहीं, तो यही तो दुख है, आ जाओ, अथवा स्त्री है कैसी स्त्री है, काली कलूठी काणी काणी कुरूपिणी स्त्री है,
कलहप्रिया
और कलहप्रिया सब समय कठोर बात के बोलने वाली, घर में रहने के लिए एक दाना नहीं, चूहे भी घर में नहीं रहते क्योंकि कुछ नहीं, केश पक गए हैं। गलितम मुंडम, गलितम मुंडम,
गलितम
मुंडम, तभी दांत भी अब नहीं रहेंगे, जाते हैं तभी वृद्ध अवस्था में घोर कठोर करते हैं, आराम से कृष्ण का भजन करने नहीं रहे। एक आदमी से गुरु जी ने पूछा, मठ में रहेगा भिखारी से, कैसा लंगड़ा, लंगड़ा भिखारी से, वो गांव में भिक्षा करता था, कोई इतना चावल कोई कुछ दे दिया, गुरु जी ने मठ में रहेगा। इसी समय में कलकत्ते से बड़े बड़े लोग आए थे सीधाबाड़ी में गुरु जी से मिलने। गुरु जी ने कहा जी आप लोग बहुत ठीक नहीं है, क्यों, आप समाज के क्रीम को पकड़ते हैं, अतः तो अच्छे बड़े लिखे और बुद्धिमान लड़कों को जो बड़े सुंदर होते हैं समाज के क्रीम को आप लोग लेते हैं, और गरीब निर्धन ऐसे लोगों को आप मठ में नहीं रखते, और नौजवानों को विशेष करके बूढ़ों को भी नहीं रखते। दई बात, उसी समय में एक भिखारी आ गया और वो लंगड़ा चल भी नहीं पाता, खुद सुंदर भी नहीं, भिखारी जैसा कपड़े पहने फटे हुए हैं, भिक्षा मांगते हुए घर आया, तो मठ में भी आ गया। हम लोग वहां पर थे गांव में देहात, वहीं पर वो सब कलकत्ते के सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बुलाया और कहा सुनो सुनो तू भीख मांग रहा है, घर में कोई है, नहीं 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 कोई नहीं, स्त्री उस्त्री है नहीं, और कोई घर वर है कुछ है, तो तुम एक बात करो दिन में कितना भिक्षा लेता है, कितना ले आता है, और थोड़ा सा कुछ जीव कुछ पेट के लिए ले लेता है, एक बात करो हमारे आश्रम में आ जाओ और हम तुम्हें खिलाएंगे कपड़ा देंगे और तुमको कुछ नहीं करना है, बैठ करके बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीजिए दीजिए दीजिए, इधर उधर जाने का जरूरत, बस यही तो कहना है हरे कृष्ण, गले में माला दे देंगे, अच्छे कपड़े इत्यादि दे देंगे, कोई भी कुछ नहीं करना। अच्छा तो मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, नहीं जब तुम्हारा घर नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज ही सर, नहीं मैं कुछ दिन के बाद, क्यों, हमारी स्त्री है घर,
लड़की है,
लड़की की एक शादी कर, अरे अभी तूने बतला ये कुछ नहीं है, घर नहीं, नहीं घर तो नहीं है, किसी तरह से छप्पर डाल करके हमारी ये लड़की और हमारी पत्नी रहती है, उसकी शादी कर करके तो मैं निश्चिंत होने के बाद में आ जाऊंगा, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से गुरु जी ने कहा जी देखिए आप लोग इसको रख दीजिए, नहीं रहा, जिनकी पूर्वजन्म की सुकृति कुछ होगी वही रह सकता है, ऊपर से देखना ये देखा जाता है कि मालूम होता है, ऐसे सुंदर मकान में, ऐसे सुंदर सब व्यवस्था में, जो घर में नहीं है बड़े ठाक बात से रहता, तुम आ जाओ तो दिन भर परिश्रम करते हैं, मरते हैं किंतु नहीं आते। अब कृष्ण भक्ति में हम चले, महाप्रभु, महाप्रभु जी राधा भाव से निमग्न होकर के बोल रहे हैं, आशा की झूली कंधों पर ली जाए, ये संसारिक आशाएं हैं, ये संसार की आशाएं कभी नहीं दूर होगी, और परमार्थिक आशा वो तो अमृत सिंधुमय सिंधु की, अमृत के सिंधु के लहरें हैं, तरंगे हैं, बड़ी आनंद है, भक्त उसके लिए कलपता है, रोता है, चल करके अब क्या हुआ, आशा झूले लिया और क्या लिया,
चिंता कांता,
चिंता कांता, किस लिए चिंता, कि कृष्ण कखन मिलने, एक चिंता विशाल,
कहां जाऊं, कृष्ण है ये चिंता विशाल,
मैं कहां जाऊं, कृष्ण कहां मिलेंगे, मेरे हृदय दुख से फट रहा है, मैं कहां जाऊं, कैसे मिलेंगे, ये चिंता विशाल, ये बड़ी चिंता है, तो वही चिंता कांता, कांता मैंने बटा हुआ
गुदड़ी,
गुदड़ी किस चीज की, कंठा मैंने फटा हुआ है, ये क्यों कहा, ये आशा इतनी हमारी दुराशा है, इतनी उन्नत है, जो मेरे लिए मिलना बड़ा भारी मुश्किल है, क्या बैठे हैं यहाँ पर संसार के कामों में, कामनाओं में, वासनाओं में लगे हुए, और सोचते हैं कि राधा जी के बाल्यदासी, राधा कृष्ण की गोलोक वृंदावन में जाकर के उनकी हम सेवा करेंगे, ये दुराशा नहीं तो क्या है? बहुत कठिन, किसी के जो कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए गुदड़ी फटी हुई, फटी मैंने निराशा। एक श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा, नैराश्येन जलति हृदयम् भक्ति लेशारसस्य प्राचीनानां भजन अतुलम् श्रीमतां क्या बोला, प्राचीनानां भजन अतुलम् श्रीमतां दृश्य, मुझे याद है, मैं प्राचीन लोगों का भजन तब देखता हूँ रूप सनातन का। मैं प्राचीन लोगों का भजन देखता हूँ, रूप सनातन ने अतुल वैभव को छोड़ दिया, उससे भी अधिक रघुनाथ दास गोस्वामी ने अतुल वैभव को छोड़ दिया, धो करके नमक के साथ में खा रहे हैं, और पिताजी ने वहां से रुपया पैसा सब कुछ भेज दिया है, ब्राह्मण नौकर चाकर सभी भेज दिए। यदि वो कहते लाखों लोगों को प्रसाद नहीं दिए जाते, अभी हम लोगों को अभी पूरी चली जाए तो मांगने की जरूरत पड़ेगी, जब हम इन लोगों को मांगने की जरूरत है, कितने लाख लोग कहेंगे ये महाराज जी प्रसाद पा लीजिए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, कितना कितना दे दें, सारे जीवन के लिए भी व्यवस्था करा सकते हैं, ऐसे लोग हैं। अभी हम लोग कहेंगे जगन्नाथ जी से रोज प्रसाद आ जाए तो अभी आ जाए, तो उसको ग्रहण नहीं किया हूं। दिन रात किस लिए, कब कृष्ण मिलेंगे? तो इसलिए प्राचीन लोगों का जो भजन है कितना तपस्यापूर्ण है। कश्यप जी ने, अदिति ने, द्रोण ने, धरा ने सिर नीचे रखकर पैर ऊपर कर अंगूठे पर खड़ी हो गई, अंगूठे पर कितना 10,000 वर्ष बिना खाए पिए, करो तो एक मिनट भी करो तो जरा उंगली पर क्या, सिर के बल से खड़े हो तो 10 मिनट के लिए, और एक हाथ की एक उंगली पर खाना पीना 10,000 वर्ष तक कुछ नहीं किया, करो तो एक दिन, जरा एक दिन एक हाथ उठाओ तो सारा दिन, एक घंटा करो तो, अभी तो उठा दिया, एक घंटा खड़ा कर दो तो, तब उनको क्या मिला, वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, बाली लीला दर्शन करने का आस्वादन करने का सौभाग्य नहीं मिला, नहीं मिला ना। राजा हरिश्चंद्र श्री दधीची ने कितना कठोर किया, बेकार का व्यर्थ गया। रूप सनातन ने कितनी कठोर, कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में, कहीं कहीं नंदगांव में, टेर कदम में, भांडीर भट्ट में, क्या कहते हैं, हाराधे आप कहा, हाराधे राधे देवी के चलित, हे नंद सुनो कुतर श्री गोवर्धन कल्पाद तले काली ही बंदी घोषणता सर्वतई खेदो महाबीपलव, महाबीपलव बीपल हो करके रोते रोते कहीं जमीन में लौट रहे हैं, चलते अकेले जा रहे हैं जमीन में लौट रहे हैं, भांडीर भट्ट में जाकर के लौट रहे, हे भांडीर बन आप इसके साक्षी हैं, भांडीर आप सच्चिदानंद घन वस्तु हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। कभी उद्धव क्यारी में चले गए, कभी कदम्ब टेर के नीचे चले गए और हाहा करके पुकार रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं भजन, कोई भजन है, कोई भजन है, तो इसको देख करके निराशा लग जाते हैं कि हमसे कृष्ण भजन नहीं होगा, किंतु जीवन किस लिए धारण कर रहे हो, तो इसलिए धारण कर रहा हूं कि वो बड़े दयालु, उनकी दयालु की वर्षा चारों तरफ विश्व में हो रही है, कभी यदि छिटक करके एक कण भी हमारे ऊपर में गिर गया, मर गया। विश्व दरीची कारुण्य, विश्व भर में उनकी करुणा की बूंदे हैं, उसकी एक यदि गिर करके उसका एक छींटा भी यदि हमारे लग गया स्पर्श का हमारा जीवन, इसलिए तो इसलिए कहते हैं कि चिंता कम था उड़ी गाय, उड़ी गाय धूली विभूष विभूति मलिन काय, हा हा कृष्ण प्रलाप उत्तर, चिंता का सब शरीर का ना सब, ये चिंता का सब सब ये कृष्ण कैसे मिले, कृष्ण कैसे मिले। वृंदावन की धूली में लोट पलोट कर मलिन गायब हो गया है। हा कृष्ण प्रहलाद, किसने रोते हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण, बस यही प्रहलाद का उत्तर देते हैं और कुछ नहीं। राय रामानंद स्वरूप दामोदर कह रहे हैं किस लिए रो रहे हैं, तो बस और कुछ नहीं, हा कृष्ण हा कृष्ण बस। उद्वेग द्वादश आते, उद्वेग द्वादश आते, लोभेर झूली नीलम आते, भिक्षा भावे क्षीण कलेवर, उद्वेग इत्यादि द्वादश, द्वादश आते
अच्छा
उद्वेग, ये सब है व्यभिचारी से अनुभव संचारी व्यभिचारी इत्यादि। लोभेर झूली नीलो माथे, इसको माथे पर ले लिया, भिक्षा भाव है किंतु भिक्षा नहीं मिल रही, अर्थात ये भाव जितने हैं अष्ट सात्विक भाव और अनुभव व्यभिचारी ये नहीं मिल रहा, इसलिए भिक्षा के अभाव में एकदम दुबले पतले हो गए, क्षीण कलेवर हो गए। व्यास सुकादि योगीगण कृष्ण आत्मा निरंजन ब्रजिता जतो लीला इत्यादि। अब आज यही तक रहे, कल हम लोग वंशा
कल्पते गंधर्विकेतौ गणे गणन अन्य श्यामलिं सदा विरलित मन्दीकृतमन्दीवन जगज्जागुरोचितं विदधतं तत्कन्दरस्य बृन्दारण्यनिवासिनं भजलपद्दामाभिरामोदरं राधा स्कन्द विनयसितो जलनिधिं ध्यायामि कृष्ण की लीला माधुरी विशेष करके रूप माधुरी जन माधुरी लीला माधुरी और मन माधुरी इनको श्रवण करके वैष्णव से या गुरु से लोभ उत्पन्न हुआ, यह लोभी पात्र है, उसी को सुखी ही लौकी का पात्र बना, जिसको क्या कहते हैं
तंबुरा
जब बाजा बनता है तब तंबुरा होता है,
तानपुरा
तंबुरा भी होता है, ऐसे उसको लेकर कहीं चलते हैं वो तुम्बा है, जो भी लोग तुम्बा का व्यवहार है उसी में खाना पीना जो पानी पीने का उसमें जो कुछ होता है उसमें भर लेते हैं, वहां करके फिर उसको निकाल करके अपना खा लेते हैं। तो ये जो भी पात्र है ओम लीला माधुरी का स्वागत कर, ये लोग हो गया रागंगा पक्षि का वह विचार, यदि लोग हो गया तो लौकी वैदिकी जितने धर्म है वो छोड़, जहां लोग सचमुच में हुआ, जैसे एक गाय बैल को भूख लगा है और वो देखता है कि वहां पर खेत है किंतु मेरे नहीं है, मेरे तो बहुत दूर से ऐसे घूम करके जाना पड़ता है, तो कुत्ता फांता हुआ मेरे की प्रतीक्षा नहीं करता, रास्ते की प्रतीक्षा में वो तो सीधे चलता है, जितना जल्दी कोई भी रास्ता उसके लिए जरूरत नहीं है, ऐसे जिस व्यक्ति को इसका लोभ हो जाता है वो वेद धर्म को प्रत्याहार, वेद धर्म ने जिस पत्नी का तुमने पाणी ग्रहण किया है जीवन भर निभाई
जिस पति के हाथ में अपना मैंने हाथ दिया है,
सारा जीवन तक उसके संबंध है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा।
ये देखा
पिता पुत्र का जन्म दे करके
यज्ञ पीड़ित रहेगा, पुत्र का पालन पोषण करेगा,
बुढ़ा होने पर पुत्र पिता माता का पालन करेगा,
समाज के साथ में एक कर्तव्य है,
देश और राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य है,
देश के और राष्ट्र के प्रति गुरुजन के प्रति उसका कर्तव्य है।
क्या अतिथि इत्यादियों के प्रति भी कर्तव्य है,
किंतु वो वेद धर्म जैसे कि अतिथि अतिथि देवो भव
ये सब संबंध है।
पूर्वजों के प्रति अपना संबंध है, उनके हम ऋणी हैं,
देवताओं के प्रति हम ऋणी हैं, उनके लिए पंच सुना यज्ञ इत्यादि किया जाता है,
देवताओं के लिए ये भी जरूरी है।
इसको दश
फल होम या क्या कहते हैं ये सब चीज,
तो ये सब वेद धर्म क्या कहते हैं,
वेद के दो दो धर्म है,
एक रहस्यपूर्ण है
और एक है बाहरी। भीतर क्या है, वेद के प्रतिपाद के भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति है,
वेद वेदांत बनी हो सबका,
किंतु बाह्यतः शरीर संबंधी मन संबंधी जो धर्म है वो वेद का वेद त्रय
धर्म बतलाया गया है,
वो शरीर के लिए मन इत्यादि के लिए है। तो ऐसे वेद धर्म को जो बाहरी है उनको तो वो छोड़ देता है,
छोड़ करके मेरा जोगी मन जोगी होकर के दिखाई
दे, मन जोगी होकर
जोगी लोग जिस प्रकार से
शंख का कुंडल अपने दोनों कानों में मोटा मोटा धारण करते हैं,
उसी प्रकार से कृष्ण लीला मंडल को
शुद्ध शंख मंडल के रूप में धारण करते हैं। कृष्ण लीला का जो वर्णन,
कृष्ण की जो लीला कथाएं हैं,
उसके श्रवण में ही अपने कान में वो कुंडल
शंख का कुंडल नहीं,
लीला कथाओं को ही अपने कानों में सब समय धारण करता है। सामान्य जोगी
शंख कुंडल
शंखारी गणरी प्रस्तुत करे, शंखारी होते हैं
शंख को काट करके चूड़ी बनाते हैं
गोल 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 गोल,
किंतु इस कुंडल को बनाने वाले
कौन है, सप्तसुख देवता
कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत।
हमारा मन रूपी योगी कृष्ण लीलाओं को
अतः भागवत रूपी कुंडल को
इसमें साक्षात बागरायण रूप बागरायणी बागरायण सुखदेव
सुख रूप कारीगर गठन कर लिया था,
बागरायण मैंने वेदव्यास
और सुखदेव गोस्वामी इसका गठन इन लीलाओं का।
योगी जहां जहां चाहे जो 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 कुछ चाहता है हमारा मन
योगी उसे स्वीकार किया है,
उसने दूसरे रूप में स्वीकार किया है, इसने दूसरे रूप में स्वीकार किया है। सामान्य जो भी अलाभो निर्मित कमंडल लौकी का कमंडल धारण करता है और दीक्षा पात्र धारण करता है, हम लोगों का जो भी कृष्ण रूपी कृष्णा रूपी कृष्ण माधुरी के का लोग ये उसके लिए कमंडल है, कृष्णा मने लो और थाली कर लिया थे किसको, नहीं कृष्ण को मैं पाऊंगा ये आशा, आशा ये भोजन का पात्र और कृष्णा मने पानी पीने के लिए वो कमंडल, ये कृष्णा और लो आशा इसी आशा से गुरु जीवित रहता है। आशा रूप झोली कान के ऊपर नहीं मिलाई जा, आशा रूप कान में झोली को उसने यहां पर दिला रखा है, क्यों पाए कृष्ण पाई गौर कैसे कृष्ण मिलेंगे, बस उसको यही चिंता है, यही उसके लिए गुजरी कंथा है गुजरी है और कोई उसको चिंता नहीं। हम लोगों के पास में 50 चिंताएं हैं और ये सब का जाल हम मकड़ी की तरफ में खुद ही हम बोले जना लेते, हमारे पूर्व कर्मों के संस्कार से ये जाल बना हुआ है, जब तक नहीं भोगे नहीं, नहीं छूटे। हम समझते हैं कि हमने क्या किया जो ये हुआ, क्या क्या तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के वजह से ये जाल बना हुआ है, उसका भोग करना। यदि भजन नहीं किया, और वो भी भजन करने वाले सभी को नहीं, जो उस स्तर है एक भक्ति का, एक स्तर है, उस स्तर पर जब पहुंचेंगे तो उसके जितने कर्म फल हैं सब टूट जाएंगे। अंततः नमाभास होना चाहिए, नमाप्राप्त से नहीं दूर होंगे, नमाभास से ही समस्त अनर्थ इत्यादि दूर हो जाते हैं, अपराध दूर हो जाते हैं, अवसर। इसलिए अंततः उस स्टेज पर हमको पहुंचना चाहिए नमाभास। नमाभास में संकेतन अवहेला भी हो, कोई बात नहीं है कि तुमको कर, किंतु अज्ञानी बल के संग हम लोगों के लिए नमाभास ऐसा नहीं है, हम लोगों के लिए सीधा साधी अपराध हो जाएगा। नमाभास होता है किसके लिए,
जो लोग नहीं जानते हैं,
जानते नहीं हो करते हैं, जैसे देवताओं की देवताओं की पूजा करते हैं, नहीं जानते हैं भगवान का नाम मिले, उनके लिए यह नमाभास। और हम लोगों के लिए ऐसा करेंगे तो नमाभास वज्र अपराध हो जाएगा। जानते हैं, हमने गुरु वचनों से सुना है, शास्त्रों में लिखा है, इसे ना पूजिबे देवा देवी, देवताओं की और दूसरों की पूजा मत करो, उनको सम्मान यथा योग्य देना है वो दो, क्योंकि भगवान की तरफ से ये संसार के वो आधिकारिक देवता हैं, उनको यथा योग्य। चींटी को हम यदि सम्मान कर सकते हैं क्योंकि उसमें भगवान का अधिष्ठान है, तो उनको क्यों नहीं देंगे। हम सब लोगों का प्रणाम करते हैं, जैसे भी कोई व्यक्ति है उनको प्रणाम करता है, उनको यथा योग्य आदर देते हैं, इसलिए उनको भी करना है। किंतु समाप्त ना नहीं बस सब विच्छेद पाषण भी भविष्य दुर्म जब तू नारायण आदि देवम, नारायण आदि देवम अन्य देवता के साथ में नारायण का बराबर समझता है, जो नारायण के समान है ऐसा समझ लेगा स्वतंत्र, तो पाषण भी भविष्य होते हैं, वो निश्चित रूप में पाषण होते हैं, भक्ति भी उसकी चौपट हो जाएगी। तो किंतु आशा, आशा की झोली लेकर के रखते, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कब कृष्ण मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी का अपने जीवन में यह चरित्र दिखला करके खुश कर रहे हैं। जो भी लोग 500 विभूति धारण करते हैं, 500 मैंने धूली और राष्ट्र, हमने देखा है कड़कती हुई मार्च के महीने में जो ठंड पड़ती है और उसमें वर्षा होती है, जो भी उनको देखा कि कुंड उन लोग लगाए हैं और यहाँ पर जटा जूट बांध रखा है, और भोर में 4 बजे स्नान करके और ठाट से बैठे, कोई कोई थोड़ा सा धुनी रमा लेते हैं, लकड़ी जला करते हैं, और तो देखा साथ विभूत लगा करके चारों तरफ से भूत लगा लेते हैं और बैठ गए, उनको सिर्फ कुछ नहीं करते। ऐसे इन लोगों ने जो धूप जो जो बोले पांच मैंने राख इत्यादि ये विभूति को विभूति मैंने धारण करते हैं ये लोग। हमारा मन रूपी जोगी धूली विभूति द्वारा मलिना का भैया छे, कैसे ये क्या विभूति धूली है, हा कृष्ण ये प्रभात वाक्य यही है। हा कृष्ण हा कृष्ण ए रूप प्रलाप वाक्य उत्तर दिया था के। सामान्य योगीगण द्वादश की बलय हाँ से बोलिया था, साधारण योगी लोग द्वादश बलय मैंने चोरिया, ये सामान्य योग। और हमारा मान लो कि योगी हाथ में अष्ट सात्विक विकार, मन का वेग, मन का मैंने वेद मैंने मन में भी मैंने एकदम कभी रोता है कभी चिल्लाता है कभी ये कंप विकार निश्वास चापल्य चिंता, ये द्वादश बलय स्वभाव आ रहा है। अष्टसात्विक 8
हो गया,
1 2 3 4 5 चापल्य और चिंता एक ले लिया, चापल्य ही चिंता इसलिए उसको एक कर दो, ये द्वादश स्वभाव आ रहा है। दशेन्द्रिय शिष्य करी भागवत शास्त्र बने कलिया से वर्णने यहाँ तर्जा पड़े अनुखण, महाप्रभु भागवत में जैसा लिखा गया है उसी के अनुसार में ये
पर जाता क्या मैंने क्या
पहेली
पहेली दस इंद्रिय शिष्य करी महाबाबू नाम धरी शिष्य नैया करी दगमन मोर देह स्वदन सदन विषय भोग महाधन सब छाड़ी गेला वृंदावन। दस इंद्रिय को शिष्य किया मैंने अपने वशी को कर दस इंद्रिया जैसा वो कहता है वैसा वो कहता है जैसे शिष्य सब शिष्य सब गुरु की जिस प्रकार से सेवा करता है दुनिया उनकी इच्छा पे कुछ भी नहीं करता उनकी इच्छा से ही सब कुछ करता है उसी प्रकार से दस इंद्रिया उनको जो कहता है वैसा ही करते इस कारण ऐसा क्रोध कर लो तो क्रोध कर या जब जैसा आप देते हैं इंद्रिया उनके जितन की हो जाती है इनको सबको लेकर के महाबाहुल नाम धरी बाहुल माने पागल महापागल होकर किसलिए पागल लोगों की दृष्टि में पागल और उसकी दृष्टि में जगत पागल और जगत के सब लोग जितने हैं उनके दृष्टि में वो पागल करते हैं। नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी के घर में निमाई पंडित के घर में आकर के और अपना धोती जो पहनते थे परिवार को निकाल करके खोल करके और यहाँ सिर पर बांध दिया और उनके घर में मैया मैया माता जी सती जी के पास में कभी नंगे शिवाजी की पत्नी मालिनी देवी के गोदी में बैठ करके बस बैठ जाते और वो समझ जाते कि दूध पीना चाहता है वो इसी चीज से लेकर के उनके चम्मच इत्यादि से उनके मुख में जैसे बच्चे का पालन करते हैं ठीक वैसे ही ये लोग महापुरुष अवधू और कभी कभी सोने का कुंडल पहन करके सोने का बेट हाथ में लेकर के पान की बातें वे चले जा रहे इनका कोई भी वेद के कंट्रोल में ये लोग नहीं है
वेद के अधीन नहीं है
तो ये लोग दस इंद्रियों को अपना शिष्य बना करके हम लोगों के इंद्रिया भी हमारे शिष्य नहीं बल्कि अभी स्वामी है वो और हम उनके शिष्य हैं जैसा हमारा मन कहता है जैसा हमारे आंख कहता है जैसा हमारा जीवा कहती है बस विशेष करके जीवा रख हमारी स्वामी नहीं है वो हमको क्या कर रही है वृंदावन से ले जा रही है कहां भोग ग्राम में ले जा रही है और ये महा पुरुष क्या कर रहे हैं दस इंद्रिय को शिष्य करके वो भोग इंद्रियों से निकल करके जा रहे हैं एकदम वृंदावन ठीक उल्टी दशा दिशा विचार करके आप लोग ऐसा ही करेंगे शिष्य मिया करी लगन मोर देह स्वसदन विषय भोग महाधन सब छाड़ी गेला वृंदावन मोर देह स्वसदन हमारा जो शरीर है वो मेरा घर है मैं नहीं हूं समझ हमारा शरीर मैं नहीं हूँ
मेरा घर है
ये मेरा है कुछ दिनों के लिए किराए में लिया हुआ ये घर है विषय भोग महाधन और इस शरीर में रहते हुए अब ये संसारिक विषय भोगों को ही अपना प्रचुर संपत्ति महाधन समझता है ऐसे जोड़ रखा है यदि कोई भिखारी अतिथि या वैष्णव भी जाए उसमें से थोड़ा सा दे दीजिए नहीं देगा यदि खास कोई भक्त भी आए तो उनके घर में जाओ तक हमारे पास तो कुछ नहीं ऐसे सीधा साधा का उसमें से इतना ही देंगे जो सूद का भी उसमें सूद के बराबर भी इतना ही अधिक से अधिक दे देंगे तो दो कौड़ी पैसा लेकर के घर से इतना आटा वो भी यदि बहुत पुराना हो किसी काम में नहीं आए तो वो दे देंगे या ऐसे कर करके संक्रांति के दिन में करके दे देंगे भले ही जगह के घर में हो जाए चोरी हो जाए आग लग जाए कोई बात नहीं एक पैसे की भी नुकसान जगत में नहीं होना चाहिए नुकसान किसको कहते हैं हानि लाभ किसको कहते हैं हम लोग नहीं समझते महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया शिव ने अपना शरीर दे दिया दधीचि ने अपना शरीर दे दिया शिव ने भी ऐसा दिया और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया किया एक दस आप जलांजलि देकर के तिल और
पानी
पानी लेकर के गंगा जी में सब समर्पण करके चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। इस जगत के भोग को नहीं समझते ये लोग, इनका सब छोड़ करके सब छाड़ गया, वृंदावन सब छाड़ गया, वो जगन्नाथपुरी में चले गए। जगन्नाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को देखो सब छोड़ करके, हमारे जितने भी आचार्य हैं वैष्णव आचार्य सब छोड़, ये धन नहीं है किंतु हम लोग इसी धन के लिए दो पैसे के लिए भी वैष्णव से भी विरोध करते हैं। वृंदावने प्रजागण जतोस्थावर जंगम वृक्षलता गृहस्थ आश्रमे तार घरे भिक्षाटन फल मूल पत्रासने ए वृत्ति करे शिष्य समय। अब वृंदावन में वो पहुंचे संकोच होकर, कौन महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरा मन मोर मन वृंदावन अन्य दूसरे का जो है वो मन है और मेरा मन क्या है वृंदावन। उस वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में आए, भूख तो लगी है ना, कृष्णा की झोली हुई है और भूख भी बड़ी लगी है, प्यास भी लगी है। तो जितने वृंदावन में स्थावर और जंगम है, स्थावर जंगम माने पेड़ इत्यादि जो है स्थावर है, लताएं इत्यादि स्थावर है, और कोयल मयूर सुशारी मनुष्य मनुष्य इत्यादि हरिण गाय ये सब क्या है जंगम। तो ये जितने भी वृंदावन में स्थावर और जंगम प्राणी हैं, वृक्ष लता ये क्या है
गृहस्थ,
ये गृहस्थ, इनको भूख लगी है तो कहां जाएंगे, गृहस्थों के आश्रम। तो ये लोग कृष्णा की झोली लेकर के भूखे ताशे कहां जा रहे हैं, भांडीर बट के नीचे जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं बंसी बट के नीचे जा रहे हैं, कोई जमुना के किनारे उपवन में घूम रहे हैं, प्यास लगी है तो क्या करेंगे, जमुना का पानी पिएंगे ना, तो जमुना में जामुन जीवन के विपरायण मानस वो वहां से वही मांगेंगे, क्या मांगेंगे, जामुना
जीवन,
जामुन का जीवन क्या है, जमुना जी का कृष्ण की लीला तेरी लीलाएं जो हैं जो उनके ऊपर में जो होती है लीलाएं, जमुना जी से भिक्षा के रूप में वो मांगेंगे। ये गृहिणी है, किसकी गृहिणी है, ब्रजेंद्र नंदन की गृहिणी है। इसलिए ये सब पानी पीने के लिए आम का रस जैसे होता है या और कोई चीज हो, तो ये जमुना जी इस चीज को देंगे। और तो ये गृह कुटुंब ये सब लोग हैं स्थावर और चंद्र, इसीलिए प्रत्येक रात में एक एक रात में रूप सनातन जी एक एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, इसलिए अलग अलग वृक्षों के नीचे लताओं के नीचे कृष्ण की अलग अलग बड़ी रसमयी लीला कथाएं हुई हैं, जैसे बंसी भट्ट में जो हुआ और भांडी बन में हुआ, दोनों एक नहीं है रस, भांडी बन में तरह तरह की लीलाएं, और वही सूर्य कुंड में वही होगा, वही राधा कुंड में वो दूसरे तरह की, वहां पर दूसरा रस, ये लोग गृहस्थ हैं सब, राधा कुंड भी
गृहस्थ,
राधा कुंड ये गृहिणी है, श्याम कुंड जी गृहस्थ है पुरुष है, ऐसे ही सब समझो, देखो भाई तो करते जाओ तो तार घरे भिक्षा उनके घर में भिक्षा, कभी सूर्य कुंड में कभी निधुवन में कभी सेवा कुंज में कभी बंसी भट्ट में कहीं नंदगांव में, कभी जरूरी नहीं है सब जगह वो मिले
माधुपुरी
माधुपुर मैंने रसगुल्ले हैं या खीर मिले, खीर भी मिल सकती है, तो राधा कुंड इत्यादि में खीर प्रस्तुत है। और चले जाओ नंदगांव के
तेर कदम
नहीं, वहां पर उद्धव क्यारी में जाओ, वहां पर नीम और बैगन का कड़ुआ है, है ना, कैसे करूंगा? तो ठीक खीर के, किंतु जब तक वो नहीं होगा तब तक खीर खाने में मीठा मजबूत नहीं लगेगा। इसलिए आदमी जब खीर खाना होता है बीच बीच में नमकीन या ऐसी चीजें ले लेते हैं, ऐसे समझो सब तरह की पिक्चर चाहिए। कल हम लोग एक जगह गए थे रूप किशोर वकील के यहाँ,
हरे कृष्ण,
तो वहां एक आदमी ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये मैं एक साधु को संत को देखा हरिद्वार में देखा, ओह मैं एकदम मुग्ध हो गया। अरे क्या देखा? बड़ी विचित्र देखा, ऐसा देखा नहीं, कहीं ये चल रहा था बहुत उत्सव बड़ा था, तो उसमें बड़े साधु लोग सब निमंत्रित थे, तो वो तरह तरह के चीजें सब बनी हुई थी, लड्डू पेड़ा बर्फी मान भोग पूरी कचौड़ी इत्यादि बहुत तरह की चीजें बनी, साधु संत लोग उसमें कुछ लोग आरोग रहे, और वो महात्मा जी अपना कमंडल लेकर के पहुंचे और कहा जी इसी में भक्त, तब तो उन लोगों ने शायद सुनी सुना। मैं देखा जी ये भक्त के क्या करते हैं, मैं जरा देखूं तू, तो मैं गया देखा एक पेड़ के नीचे सबको ऐसे ऐसे कर दिया एक जगह, और कर करके आंख बंद करके उन्होंने सबको एक जगह, उसमें तीखा कड़वा नमकीन इत्यादि जो कुछ है सबको एक जगह कर करके खा लिया। महात्मा जी आप तो बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? बहुत परिश्रम से तो ऐसा किया गया था अलग अलग। अरे बेटा जब पेट में चला जाता है देते हैं सभी एक ही नहीं जाते हैं, एक ही है द्वितीयो नास्तिक। मैंने कहा कि आपका ये परम दुर्भाग्य है कि ऐसे संत कहने वाले व्यक्ति से आपको भेंट हुई और उनके प्रति आपकी